मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 22 अक्टूबर 2018 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और साथ ही हार्दिक रूप से अभिनंदन भी करता हूं। दोस्तों, आज केवल 22 अक्टूबर ही नहीं है बल्कि सोमवार भी है और आप जानते हैं कि सोमवार को हम लोग सामान्यतया किसी के जीवन का एक प्रसंग लेते हैं और उसके माध्यम से फिर जीवन के बारे में कुछ बातें करते हैं। तो आज के लिए मैंने जिनके जीवन का एक प्रसंग लिया है उनका नाम आपने सुना होगा और सबसे अच्छी बात यह है कि हालांकि हैं वो आध्यात्मिक जगत के और बहुत महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व हैं, लेकिन उनके बारे में जो जानकारियां हैं वो डॉक्यूमेंटेड हैं। डॉक्यूमेंटेड है कहने का मतलब कि किंवदंतियों पर आधारित नहीं है। जैसे देखिए, आप मध्यकाल या उससे पहले के हमारे संत महात्मा या जो विचारक साहित्यकार दार्शनिक हुए हैं उनकी जीवनियों के बारे में कोई सही लेखा जोखा नहीं मिलता है, क्योंकि उस दौर में इस तरह के लेखे जोखे रखने की कोई परंपरा नहीं थी, प्रथा नहीं थी, प्रणाली नहीं थी। लेकिन जो आधुनिक युग के ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं उनके बारे में तो हमें बकायदे जानकारियां मिलती हैं और लिखित जानकारियां मिलती हैं। और यह बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि इन जानकारियों पर या इन जीवन प्रसंगों पर, इन घटनाओं पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। बस सिर्फ मैंने इसी को स्पष्ट करने के लिए यह बात कही है, अदरवाइज इसका संबंध संदेश से कुछ भी नहीं है। तो मित्रों, मैं आज जिनके जीवन की छोटी सी घटना के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं उनका नाम है रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे देश में जगह जगह पर रामकृष्ण आश्रम खुले हुए, मिशन खुले हुए हैं और विवेकानंद जी के नाम से तो आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ ही हैं और रामकृष्ण जी विवेकानंद के गुरु रहे हैं और इनका निधन हुआ था 1886 में, 1886 और डेट है 16 अगस्त। 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है वो 1947 में हुआ तो उसके एक दिन बाद 16 अगस्त, लेकिन वर्ष जो है वो 1886 है। यू कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अगले वर्ष। खैर मित्रों, तो आइए एक छोटी सी घटना है जो हम देखते हैं और उसके जरिए फिर हम कुछ और बातें करेंगे। घटना यूं है कि रामकृष्ण परमहंस जी के एक बहुत ही प्रिय शिष्य थे और वह थे मणिकलाल मलिक। उनके बहुत प्रिय शिष्य थे और ये जो रामकृष्ण परमहंस है ना, ये आपकी कलकत्ता से, जिसको आज हम कोलकाता कहते हैं, उससे थोड़ी दूर एक जगह है बेलूर, अब वहां बेलूर मठ भी है, वहां रहा करते थे। तो कलकत्ते से बहुत से लोग उनके पास जाते रहते थे, युवा वर्ग भी जाता रहता था। उन्हीं जाने वालों में एक हमारे नरेंद्र थे जो बाद में विवेकानंद कहलाए। तो लगातार आध्यात्मिक चर्चाएं होती रहती थी, लोग उनके दर्शन के लिए जाते रहते थे, प्रश्नों के समाधान के लिए जाते रहते थे और रामकृष्ण परमहंस उसके लिए पूरा अवसर निकालते भी थे, समय निकालते थे। तो उनके जो शिष्य थे मणिकलाल मलिक, तो उनकी एक बेटी थी जो इनफैक्ट मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, बेचैन रहती थी, डिप्रेशन में थी, यूं भी कहा जाता है कि बहुत उद्विग्न भी रहती थी। तो बहुत ज्यादा दिक्कत उनके शिष्य को थी अपनी बेटी की इस स्थिति के कारण। और होता यह था कि उनकी बेटी किसी भी बिंदु पर टिक नहीं पाती थी, यानी कि उनका जो मन था उनकी बेटी का वो किसी एक जगह ठहरता नहीं था, कभी ऐसा कभी वैसा कभी ऐसा। तो इसको लेकर के मणिकलाल जी बहुत परेशान रहते थे, बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। तो मणिकलाल जी अपनी बेटी को लेकर के परमहंस जी के पास गए और परमहंस जी ने उनसे एक छोटा सा सवाल पूछा उनकी बेटी से, और उनसे पूछा कि ये बताओ कि तुम्हें संसार में सबसे प्रिय क्या लगता है, या यूं कह लीजिए कि संसार में तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु क्या है। केवल एक छोटा सा प्रश्न उनसे किया। उनकी बेटी ने कहा, मेरे भाई का छोटा लड़का, छोटा सा बच्चा था, बोले वह मुझे बहुत प्रिय लगता है, मेरे भाई का छोटा बच्चा। अब आप देखें कि रामकृष्ण परमहंस क्या कहते हैं, वो देखिए आध्यात्मिकता की बहुत ऊंची वाली सीढ़ी पर पहुंचे हुए व्यक्ति थे आप जानते हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं कि वो मां काली से सीधे सीधे बात किया करते थे, संवाद किया करते थे। और भक्त तो ऐसे थे कि बैठे बैठे वो साधना में लीन हो जाते थे, लुढ़क जाते थे, इतने ज्यादा प्रेम से भर जाते थे मां के प्रेम से। तो दोस्तों जब उन्हें यह उत्तर मिला कि भाई का छोटा लड़का ये मेरे सबसे प्रिय वस्तु है संसार की, तो रामकृष्ण परमहंस क्या कहते हैं देखिए, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, उसी पर अपने विचारों को केंद्रित करो, मतलब जो भाई का छोटा लड़का है अपने पूरे थॉट्स उस पर फोकस्ड कर दो, केवल उसी के बारे में सोचो, बस खत्म। और उसने वैसा ही किया, उसने वैसा ही किया। और जब वो वैसा करने लगी तो धीरे 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 उनके अंदर बाल मूर्ति की जो बाल मूर्ति वाला जो कृष्ण होता है, जिसे हम सब बोलचाल की भाषा में लड्डू गोपाल आजकल कहने लगे हैं, उनकी भक्ति का भाव पैदा हो गया और उसकी भक्ति वो करने लगी। बात पूरी हो गई, घटना पूरी हो गई। अब आइए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि यह घटना क्या बताती है, क्या कहती है। देखिए मित्रों, यहां हम सही मायने में जो प्रेम की ताकत होती है उसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे, और किस तरीके से ये प्रेम की ताकत जो सांसारिक वस्तु से पैदा हुई है और किस तरीके से आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने का रास्ता बन जाती है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम सब ये मान करके चलते हैं कि जैसे मेरी इच्छा है तो अगर मैं अपनी उस इच्छा का दमन नहीं करूंगा तो मैं आध्यात्मिकता की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं भगवान को नहीं पा सकूंगा। अगर भगवान कुछ ऐसे हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, कोई अल्लाह को नहीं पा सकेगा, कोई खुदा को नहीं पा सकेगा, कोई ईसा को नहीं पा सकेगा, जो भी अपनी अपनी आस्थाएं हैं उसके आधार पर सब एक तरह से आध्यात्मिक ऊंचाइयों को पाने की कोशिश करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप ऐसा लगता है कि हमारी ईश्वर से मुलाकात होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट है देखिए कि उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारी संसार की सबसे प्रिय वस्तु कौन सी है। इसके दो अर्थ हैं। पहली बात, संसार की सबसे प्रिय वस्तु, सपने की प्रिय वस्तु नहीं, कल्पना की प्रिय वस्तु नहीं, संसार की प्रिय वस्तु जो भौतिक जगत में जो दिखाई दे रहा है, तुम उस प्रिय को बताओ। वो कुछ भी हो सकता है, वो जलेबी हो सकती थी, वो कोई जगह का नाम हो सकता था, वो कोई व्यक्ति हो सकता था, कुछ भी है वो बताओ। तो उन्होंने बता दिया और बस खत्म। तो अब भौतिक माध्यम क्या हुआ, भौतिकता, भौतिक वस्तु। लेकिन वो वस्तु कैसी है, प्रिय है, सबसे अधिक प्रिय है। तो दूसरा तत्व तो क्या हो गया, प्रेम। अगर कोई भी वस्तु हमें प्रिय लगती है और वास्तव में प्रिय लगती है और हम जब उस पर फोकस्ड हो जाएंगे, उसमें डूब जाएंगे और उससे प्रेम करने लगेंगे, तो वही वस्तु ईश्वर में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे कि अब वो छोटा बालक था, बालक छोटा है, छोटा हो रहा होगा, तो वो कृष्ण के रूप में परिवर्तित हो गया, बाल कृष्ण के रूप में बदल गया। आप देखिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ क्या हुआ था, आपको कथा मालूम है कि किस तरीके से वो अपनी पत्नी के प्रेम में बरसते हुए रात, बरसती हुई रात में वो पहुंच गए थे और उनकी पत्नी ने उन्होंने ताना दिया था और यही कहा था कि जितना प्रेम तुम्हारा मुझसे है, अगर उतना प्रेम राम से हो जाए तो फिर बात ही क्या है। तो ठीक है, पत्नी के प्रति ही उनका प्रेम था, पत्नी भौतिक जगत में है और पत्नी के प्रेम को, या कह लीजिए एक कामुक प्रेम को, उन्होंने सीधे सीधे कहां तब्दील कर दिया, राम के प्रेम में तब्दील कर दिया। और वो इतने बड़े संत बन गए और देखिए कि बकायदे रामचरितमानस के अंत में जो दोहा है उसमें तुलसीदास जी ने यही कहा है, कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभई प्रिय जिमीदाम, तैसे हूं मोही निरंतर प्रिय लागहू मोहे राम। कि हे राम, मुझे आप उसी तरह से प्रिय लगे जिस तरीके से एक कामुक व्यक्ति को कामी ही नारी प्यारी जिमी, इस नारी प्रिय लगती है और लोभई प्रिय जिमीदाम, और जिस तरह से लोभी व्यक्ति को पैसा धन प्रिय लगता है, तो मुझे उस तरह से प्रिय लगो। तो आप देखिए कि यहां भी जो उपमा दी गई है, किस तरह के प्रेम की बात कर रहे हैं, भौतिक जगत, क्योंकि भौतिक जगत की जो का जो प्रेम होता है, सबसे बड़ी बात यह होती है उस पर आपका भरोसा होता है, क्योंकि वो चीज दिखाई दे रही है ना। एक ईश्वर के प्रेम की मैं अगर सीधे सीधे बात कहूं तो कभी कभी लगता है यार वो होता भी होगा या नहीं होता होगा। लोग तो कहते हैं, कुछ निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं कि उनके हाथ पैर कुछ रूप स्वरूप है ही नहीं, कुछ लोग फिर सगुण ब्रह्म की बात करते हैं, सगुण में भी इस तरह के हो सकते हैं, इस तरह के हो सकते हैं। तो आप तो हचपच में है, आपका जो फोकस है, आपका जो मन है, वो एक जगह पर टिक ही नहीं पा रहा है। और जब एक जगह नहीं टिक पा रहा है तो स्वाभाविक है कि उसकी शक्ति भी बढ़ नहीं पा रही है, और जब शक्ति नहीं बढ़ पा रही है तो वो जो मेरे जो प्रेम का भाव है, वो प्रेम का भाव भक्ति में तब्दील नहीं हो रहा है। मित्रों, या तो यहां जो मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा हूं थोड़ी सी, और जो अभी तक के जो हमारे विषय रहे हैं उन सबसे थोड़ा सा ये हटकर भी है, वो ये कि भौतिकता को नकारने की जरूरत नहीं है, भौतिकता का सही तरीके से उपयोग करने की जरूरत है। कि ये जो भौतिक जगत है जो संसार ने बनाया है, किस तरीके से हम इसे अपने विकास और अपने आध्यात्मिक उत्थान का साधन बना सकते हैं, और ऐसा किया जा सकता है, और यह हमारे अपने ही हाथ में है। और जो माध्यम है वह है प्रेम। जैसे ही हम प्रेम में डूब जाते हैं, वैसे ही वह हमारा जो डूबना है वह हमें आध्यात्मिकता की मंजिल तक पहुंचा देता है। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। कल आप सबसे फिर मुलाकात होगी और बातें होंगी, तो तब तक के लिए मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।